चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 11 हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण। मैं हरिदास ठाकुर तथा उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर नृत्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो अत्यंत दयालु हैं और जो अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। श्रीनिवास ठाकुर के प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर के स्वामी की जय हो, गदाधर पंडित के प्रिय स्वामी की जय हो, स्वरूप दामोदर के प्राण नाथ की जय हो, काशी मिश्र के परम प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वे जगदानंद के प्राण नाथ हैं और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रभु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप की जय हो, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। हे प्रिय प्रभु, आप अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राणाधार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगा ले। उन अद्वैत आचार्य की जय हो, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी आयु तथा आदरशीलता के कारण श्रेष्ठ मानते हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, क्योंकि महाप्रभु उनके जीवन और प्राण हैं। कृपया आप सभी मुझे भक्ति का दान दें। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन के इन 6 गोस्वामियों की जय हो। ये सब मेरे स्वामी हैं। मैं महाप्रभु की लीलाओं तथा गुणों की यह कथा श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों की कृपा से लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि किस तरह उचित रीति से लिखूं, किंतु इस वर्णन को लिखकर मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का आनंद लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु दिन में नृत्य, कीर्तन तथा जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में लगे रहते। रात में वे अपने अत्यंत विश्वस्त भक्तों यथा रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य रस का अमृत आस्वादन करते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सुख पूर्वक अपने दिन नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी में बिता रहे थे। कृष्ण से विरह के कारण उनके शरीर में अनेक दिव्य लक्षण प्रकट होते थे। दिन प्रतिदिन ये लक्षण बढ़ते गए और रात में ये और भी अधिक बढ़ जाते। ये सारे लक्षण यथा दिव्य चिंता, उद्वेग तथा उन्मत्त का प्रलाप उसी रूप में विद्यमान थे, जैसा कि शास्त्रों में उनका वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमुख सहायक स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय दिन रात महाप्रभु के साथ रहते। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद बहुत ही आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरिदास ठाकुर के पास गया। जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे अपनी पीठ के बल लेटे हैं और धीरे धीरे जप माला में जप कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, कृपया उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आज मैं उपवास रखूंगा, मैंने अभी अपना जप पूर्ण नहीं किया है, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? किंतु तुम तो महाप्रसाद लाए हो, भला मैं उसकी कैसे उपेक्षा करूँ? यह कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया और उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण कर लिया। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास के स्थान पर गए और उनसे पूछा, हरिदास तुम ठीक तो हो? हरिदास ने महाप्रभु को नमस्कार किया और उत्तर दिया, मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। महाप्रभु ने कहा, क्योंकि अब तुम वृद्ध हो गए हो, अतः नित्य जप किए जाने की नाम संख्या घटा सकते हो। तुम तो पहले से मुक्त हो, अतएव तुम्हें कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवतार में तुम्हारी भूमिका सामान्य लोगों का उद्धार करने की है। तुमने इस जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार किया है। महाप्रभु ने अंत में कहा, इसलिए अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप संख्या कम करो। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आप कृपया मेरे वास्तविक निवेदन को सुने। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ और मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है। मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे नीच तथा गर्हित व्यक्ति हूँ। मैं न देखने योग्य तथा अछूत हूँ, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ हुआ कि आपने मेरा नारकीय स्थिति से उद्धार किया है और वैकुंठ पद पर पहुंचाया है। हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र ईश्वर हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार सारे जगत को नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। उदाहरणार्थ मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। दीर्घ काल से मेरी एक इच्छा रही है, हे प्रभु, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लीला का यह अंतिम अध्याय मुझे नहीं दिखलाएं, इसके पूर्व कि वह समय आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर आपके सामने धराशायी हो जाए। मैं आपके कमल वत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और आपके चंद्रमा सदृश मुख मंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं। कृपया मुझे इस तरह से अपना शरीर छोड़ने दें। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दें। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, कृष्ण इतने दयामय हैं कि तुम जो भी चाहते हो उसे वे अवश्य पूरा करेंगे, किंतु मेरा जो भी सुख है वह तुम्हारी संगति के कारण है। यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ कर कहा, हे प्रभु, कृपया आप माया उत्पन्न न करें। यद्यपि मैं अत्यंत पतित हूँ, किंतु आप मुझ पर यह दया अवश्य दिखलाएं। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं। वे सभी आपकी लीला में सहायक हैं। हे प्रभु, यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट मर भी जाए तो कौन सी हानि है? यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है? हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं। मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। यही मेरी आशा है। क्योंकि दोपहर के कृत्य करने शेष थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से विदा होने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु यह तय हुआ कि अगले दिन वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर को देखने आएंगे। उनका आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोपहर के कृत्य करने चले गए और स्नान करने हेतु समुद्र गए। अगले दिन प्रातः काल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य सारे भक्तों के साथ तेजी से हरिदास ठाकुर को देखने आए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरिदास ठाकुर के समक्ष आए। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे हरिदास, क्या समाचार है? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझ पर जो भी कृपा करें। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। इसमें वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे सारे महान भक्तों के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके पांच मुख हो। उन्होंने जितना ही अधिक वर्णन किया उनका सुख उतना ही बढ़ता गया। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। उन सबों ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बैठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुख मंडल पर टिका दिए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया और तब समस्त भक्तों के चरणों की धूली लेकर अपने मस्तक पर लगाई। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण किया। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। हरिदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म के मरण का स्मरण हो आया, क्योंकि यह मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया तो कोलाहल मच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से विह्वल हो उठे। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वे अत्यंत प्रेमावेश में आकर आंगन में नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के कारण सारे भक्त निरुपाय थे और वे भी प्रेमावेश में नृत्य तथा सामूहिक कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक इसी तरह नृत्य करते रहे और तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ठाकुर हरिदास के शरीर के लिए अन्य क्रियाओं के विषय में उन्हें सूचित किया। तब हरिदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया जो विमान जैसा था और सामूहिक कीर्तन के साथ उसे समुद्र ले जाया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु शोभा यात्रा के आगे आगे नृत्य कर रहे थे और वक्रेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराया और घोषित किया, आज से यह समुद्र महान तीर्थ स्थल बन गया है। हर एक ने उस जल को पिया जो हरिदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श कर चुका था और सबों ने जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरिदास ठाकुर के शरीर पर लेप किया। बालू में गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास ठाकुर का शरीर रख दिया गया। तब भगवान जगन्नाथ का प्रसाद यथा उनकी रेशमी रस्सियां, चंदन लेप, भोजन तथा वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रखा गया। भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए भालू से ढक दिया। भक्तों ने हरिदास ठाकुर के शरीर को भालू से ढक कर उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। इस चबूतरे को चारों ओर से चार दीवारी द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चबूतरे के चारों ओर नृत्य और कीर्तन किया और जब हरिनाम का कोलाहल हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ समुद्र में तैर कर तथा हर्षित होकर जल क्रीड़ा करके स्नान किया। हरिदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर गए। सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया और कोलाहल से सारा नगर गुंजायमान हो उठा। सिंह द्वार पर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां के सारे दुकानदारों से वस्त्र फैलाकर प्रसाद मांगने लगे। महाप्रभु ने कहा, मैं हरिदास ठाकुर के देहावस्थान के सम्मानार्थ उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दे। यह सुनकर सारे दुकानदार तुरंत ही बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भर कर ले आए और प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया। किंतु स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों को रोका और वे अपनी दुकानों में लौट कर अपनी अपनी टोकरी लेकर बैठ गए। स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके निवास स्थान पर भिजवा दिया और अपने साथ चार वैष्णव तथा चार भोजा ढोने वाले नौकरों को रख लिया। स्वरूप दामोदर ने सारे दुकानदारों से कहा, मुझे हर टोकरी में से चार चार अंजुली प्रसाद दे दो। इस तरह कई तरह के प्रसाद एकत्र कर लिए गए। उन्हें विभिन्न पोटलियों में बांधा गया और चार नौकरों के सिरों पर रखा कर ले जाया गया। इस तरह न केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रसाद लाए अपितु वाणी नाथ पटनायक तथा काशी मिश्र ने भी प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को पंक्तियों में बिठाया और चार अन्य व्यक्तियों के साथ वे स्वयं उस प्रसाद का वितरण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अल्प मात्रा में प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं था, अब हर पत्तल में वे इतना रख देते थे जो पांच व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, कृपया बैठ जाएं और देखें मेरी सहायता करने वाले इन लोगों के द्वारा मैं यह प्रसाद वितरित किए देता हूँ। स्वरूप दामोदर जगदानंद काशीश्वर तथा शंकर इन चार व्यक्तियों ने लगातार प्रसाद का वितरण किया। सारे बैठे हुए भक्त तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे थे जब तक महाप्रभु प्रसाद नहीं पा लेते, किंतु उस दिन काशी मिश्र ने महाप्रभु को निमंत्रित कर रखा था, इसलिए काशी मिश्र स्वयं वहाँ गए और उन्होंने बड़े मनोयोग से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया तथा उन्हें खिलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब वे खाने लगे तो सारे वैष्णव भी खाने लगे। हर एक ने जी भर कर भोजन किया क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परोसने वालों से कहे जा रहे थे उन्हें और दो और दो। जब सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया और अपने अपने हाथ तथा मुंह धो चुके तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को फूल माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया। प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया जिसे सबों ने बड़े ही संतोष के साथ सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आशीर्वाद दिया, जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है तथा जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया है, उसे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरिदास ठाकुर की संगति प्रदान की। स्वतंत्र इच्छा होने के कारण कृष्ण ने अब वह संगति छुड़ा दी है। जब हरिदास ठाकुर ने यह भौतिक जगत छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति के बाहर था। हरिदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्व काल में भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया था, जैसा कि हमने शास्त्रों में सुना है। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुट मणि थे। उनके बिना अब यह जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबों से कहा, हरिदास ठाकुर की जय बोलो और पवित्र हरिनाम का कीर्तन करो। यह कह कर वे स्वयं नृत्य करने लगे। हर व्यक्ति कीर्तन करने लगा, हरिदास ठाकुर की जय हो जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं भी सुख तथा दुख की मिश्रित भावनाओं में डूबे विश्राम करने लगे। इस तरह मैंने हरिदास ठाकुर के गौरवमय महाप्रयाण का वर्णन किया है। जो भी इस कथा को सुनता है वह निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में अपने मन को दृढ़ करेगा। हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की घटना से तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस यत्न के साथ उसको मनाया, उससे यह समझा जा सकता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हैं। यद्यपि वे सन्यासियों में सर्वोच्च हैं, किंतु उन्होंने हरिदास ठाकुर की इच्छा पूर्ण की। हरिदास ठाकुर की अंतिम अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संग देते रहे और उन्हें अपना स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर महाप्रभु ने नर्तन किया। अपनी अहेतुकी कृपा से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को भालू से स्वयं ढका और दुकानदारों से स्वयं भिक्षा मांगी। तत्पश्चात उन्होंने हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण का महोत्सव मनाया। हरिदास ठाकुर न केवल सर्वोच्च भगवत भक्त थे अपितु वे एक महान परम विद्वान भी थे। यह तो उनका परम सौभाग्य था कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रयाण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन तथा उनके गुण अमृत के समुद्र के तुल्य हैं, जिसकी एक बूंद मन तथा कर्णों को तृप्त कर सकती है। अतः भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा गुणों के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्ण दास श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के अंतर्गत हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण शीर्षक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।